قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. اللہ اکبر، کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں، اس سے بھی زیادہ شر کی چیز، اس سے بھی زیادہ بری چیز. آپ پہلے بات آئی نا کہ پوچھیں ان سے کہ کیوں یہ ہمارے خلاف ہیں، کیوں ہم سے دشمنی کرتے ہیں، کیوں ہم پہ غصہ نکالتے ہیں، جبکہ کوئی دشمنی کا سوال ہی نہیں ہے. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیا چیز ہو، تمہارے اپنے آباؤ اجداد کی تاریخ ہے وہ تو سن لو، تم ہم پہ کیا غصہ کرتے ہو یا ہم پہ سے کیا دشمنی کرتے ہو، تم یہ تو دیکھو کہ جو تمہارے آباؤ اجداد تھے وہ کیا تھے. میں ان سے بھی، اس سے بھی زیادہ بری چیز تمہیں بتاؤں، من ذالک، جس کے ساتھ دشمنی کرنی چاہیے یا جس کے اوپر غصہ کرنا چاہیے. مثوبتن عند اللہ، اللہ کے ہاں جو بدلے کے لحاظ سے جو سب سے بری چیز ہے وہ یہ ہے کہ من لعن اللہ، جس پہ اللہ نے لعنت کر دی، وہ پتا ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہوئی بھی ہے. آگے اس کی ایک وجہ آ رہی، وہ ایک وجہ ہے صرف، بہت ساری وجوہات ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ بھی لی ہیں، لیکن جن کے اوپر لعنت کی گئی نا، آج ہم کہتے ہیں ان کو مان لو، ان کو تسلیم کر لو، کیونکہ ہم بھاگے جا رہے ہیں آج ان کو ماننے کے لیے، ان جن کے بارے میں خاص طور پہ یہ کہا گیا، اور آگے آئے گا کہ یہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جن جس پہ غضب ہوا اللہ کا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور جن کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا. بندر والی تو ہم سٹوری پڑھ چکے ہیں، لیکن انہی کے اندر یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا کہ ان میں سے کسی کو بھی ایک اس کو خنزیر بھی بنایا گیا تھا. وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور جنہوں نے بندگی کی طاغوت کی، جس نے بندگی کی طاغوت کی، یہ وہ سب سے برا وہ ہے اللہ کے نزدیک. تاغوت کی بندگی کیا ہے؟ مطلب تاغوت ہر اس قوت کو کہتے ہیں، ہر وہ پاور جو اللہ کی پاور کو چیلنج کرتی ہے، کلم کلا جو کہے کہ اللہ کی نہیں ماننی، میری مانو، دھڑلے سے کہے. خود بھی وہ اللہ کی بندگی ظاہر ہے نہیں کرتے، تو جو اس طرح کہتے ہیں، اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ تمہیں بھی نہیں ماننا، تم میری عبادت کرو، میری مانو، تو وہ تاغوت کے بندے بنے. تاغوت انسان کا نفس بھی ہو سکتا ہے، تاغوت شیطانی قوتیں بھی ہو سکتی ہیں، تاغوت کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بھی ایسا کرے، تاغوت کسی کا معاشرہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہیں جو سب سے زیادہ بدلے کے لحاظ سے سب سے زیادہ برے ہیں اللہ کے نزدیک، جن کے اوپر اللہ نے لعنت ہی کر دی. یعنی یہ ان کی تاریخ ہے، یہ ان کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے، اللہ کا غصہ ان کے اوپر ہوا اور دشمنی تمہارے ساتھ رکھتے ہیں. تو سب سے زیادہ گمراہ لوگ یہ ہیں، اولئک شر مکانا و ادل عن سواء السبیل، سب سے زیادہ بدترین مرتبے میں اور سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے راستے کے اعتبار سے. تو میں تمہیں بتاؤں کہ کون ہے جن کے اوپر اللہ کا غصہ ہوا ہے، تو ان کی تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ بدترین لوگ یہ تھے. اور تم اپنی خرابیوں کو دیکھو، تم ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہو، یہ تھا تمہارے آباؤ اجداد کا کردار اور یہ تھا ان کا ٹھکانہ. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور یہ بات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں اسی طرح کی آیت، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنی پلاننگ یہ ہوتی تھی کہ صبح کو جائیں گے اور جا کے ہم ایمان کا دعویٰ کریں گے، اور شام کو نکلیں گے اور کہیں گے وہ اس دین میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کا، کچھ نہیں. وہ تاکہ لوگوں کو جو کمزور مسلمان ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، نئے نئے یا مسلمان ہوئے ہیں، اتنا ابھی وہ سٹیبل نہیں ہوئے اپنے ایمان میں، تو ان کو بھی متزلزل کر دیا جائے، وہ بھی اس دین میں ٹھہر نہ سکیں، یہ ان کی چال تھی. تو وہی والی بات یہاں پہ ہے، وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم تو ایمان لے کر آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ داخل بھی کفر کے ساتھ ہوتے ہیں اور نکلتے بھی کفر کے ساتھ ہیں، یعنی اس وقت بھی ایمان ان کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آیا ہوتا. صرف اوپر کی باتیں نا لوگوں کو دیکھا، آپ نے دیکھا نہیں لوگوں کو بڑا افیکٹ ہوتا ہے اس بات کا، بھائی لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں پہ بات صحیح کہی جا رہی، وہ دیکھتے ہیں اگر بہت بہت سارے کو تو چھوڑے، مثلا سڑک پہ کوئی جا رہے ہیں، ہاں تین لوگ اگر کہیں کھڑے ہو جاتے نا तो चौथा जो गुजरने वाला ना, वो कहता मैं भी खड़ा होकर देखूं कोई चीज है, पता नहीं क्या है। आप देखते हैं कहीं गाड़ियां रुक के जा रही हैं, आप भी रुक के देखते हैं क्या देख रही थी ये गाड़ियां, होता है ना ऐसे। अच्छा फिर कहीं से कोई उठ के जाने शुरू हो जाए, दो लोग गए तो तीसरा भी कहता है मेरे ख्याल मुझे भी जाना चाहिए, अगर सब लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। तो लोगों को इस तरह, आम जो आवाम होती है ना, जो अपने दिमाग से नहीं सोचती, बस भेड़ चाल है, बस दूसरों के पीछे लगने वाले, वो उनके ऊपर साइकोलॉजिकली ऐसा इफेक्ट होता है इस चीज का। देखो ये तो इतने इल्म वाले, भला ऐसे क्या हो गया, उनको नहीं बात समझ आई। अब कुछ लोग सोचते हैं वो देखे ये यहूदी है, या ये इतने बड़े पढ़े लिखे हिंदू हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको नहीं भला समझ आती। अरे उनको नहीं समझ आ रही, वाकई नहीं समझ आती। अगर उनकी अकलें खत्म हो चुकी हैं तो इसके अंदर ये नहीं कि हक वाजे नहीं, हक तो वाजे है। ये लोग ऐसे लोगों को देखते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं, और फिर अपने आप को डाउट करने लगते हैं कि भला अगर ऐसी बात होती तो इनको समझ आ ही जानी थी ना। तो देखें ये था उनका प्लान, ताकि मुसलमानों को उनके दीन से हटाएं। इन्होंने कोई एक कोशिश नहीं की है और आज भी साजिशें करते रहते हैं। वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तुमून, और अल्लाह को पता है जो इन्होंने दिलों के अंदर छुपाया हुआ, यानी उनका तो प्लान ये है, अल्लाह को पता है कि इनकी ये प्लानिंग है। इन्होंने ईमान नहीं लाना, ये बस आए और उठ के वैसे ही चले गए, ना ईमान उस वक्त लाए ना बाद में इनके अंदर ईमान था। और आप देखें कितनी बदनसीबी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आके भी उनको ईमान ना नसीब हुआ, दिल में कोई बात ना घर की। इसी तरह बाज लोग दीन की मजलिसों में जाते हैं, इतने लेक्चर जबरदस्त होते हैं, उसके अंदर बैठते हैं सुनते हैं, और उसके बाद उठते हैं तो क्या है, कुछ भी, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। जरा भी दिल के अंदर कोई गुदास नहीं पैदा हुआ, जरा दिल नरम नहीं हुआ, कोई अंदर हलचल ही नहीं हुई। आज भी ऐसे लोग हैं और उठते हैं तो उसके बाद कहते हैं ये तो मौलवियों का काम ही है, ये तो बस इन्होंने ऐसे ही बनाई हुई बातें हैं, और छोड़ो इनकी बातों को, इनके पीछे गए तो बस ये चलो फन करो, कुछ नहीं है। फिर उनका फिर वही रवैया होता है। वतदरा कसीरम मिनहुम युसारिउना फिल इस्मि वल उदवान, तुम देखोगे इनमें से अक्सर को किसमें दौड़ धूप कर रहे होते हैं, इस्म और उदवान, यानी गुनाह में और ज्यादती के कामों में। इस्म वो होते हैं गुनाह जो अल्लाह के हक में कमी की जाए, और उदवान वो गुनाह है जो इंसानों के साथ कोई ज्यादती के काम है, जो इंसानों के हकूक कसब करना, ये उदवान है। ठीक है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। तो इनका हाल क्या है, भाग दौड़ किसमें करनी चाहिए, नेकी में, और इनकी हालत क्या है, ये भाग दौड़ किसमें करते हैं, बुराई में। याद रखें भाग दौड़ कब होती है, जब चाहे नेकी हो चाहे बुराई हो, लेकिन जब इंसान उसको इख्तियार किए रखता है करता जाता है करता जाता है, तो वो फिर उसकी आदत बन जाती है, फिर वो उसको मुश्किल नहीं लगती, फिर बस इरादा ना भी करे उसी तरफ चल पड़ता है इंसान। नेकी को भी अगर आप कसरत से करते रहेंगे, एक दिन वो आपके ऐसी रूटीन में आ जाएगी कि आपको मुश्किल नहीं होगी वो करनी। इसी तरह बुराई भी है, हम बुराई को सोचते हैं ना, कोई बात नहीं एक दफा कर लेते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बाद में तौबा कर लूंगी, नहीं, वो आपकी हैबिट बन जाती है, फिर उसके बाद वो छूटती नहीं है, और उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी यू सारी होना फिर इसमें कैसे है, कैसे हो सकता है कि कोई भागे गुनाहों के अंदर, इसलिए कि आप वो गुनाह उनके लिए कोई गुनाह ही नहीं रहेगा, वो उनकी आदत है, वो ऐसे ही करते हैं। तो ये ना सिर्फ अल्लाह के हकूक में, इंसानों के बारे में भी, उनके हकूक में भी ज्यादतियां करने वाले थे, उसमें भी भाग दौड़ करते थे। और आज भी देख लें जो भी गुनाह के काम है, बिदतें हैं, शिर्क की चीजें हैं, गुनाह की चीजें, इसके अंदर कितनी भाग दौड़ है। आप एक कॉन्सर्ट रख लें कहीं, आप कहीं मेहंदियां कर लें, आपको बुलाने की भी नहीं जरूरत होगी। आप ये मेले ठेले उर्स वगैरह पे देखें, धमाले देखें लोग कैसे डालते हैं, फिर आप देखें कहीं कुंडे वगैरह हो रहे हैं, कहीं इस तरह की चीजों में लोगों को कितना इंटरेस्ट होता है, भाग भाग के जाएंगे उसके अंदर, भाग भाग के लगे हुए उस काम के अंदर, क्योंकि इनमें रंगीनियां बहुत है। गुनाह के अंदर ना एक अट्रैक्शन होती है, ना, मैंने आपको ये जो हदीस बताई है अभी, इसी के अंदर जहन्नुम के बारे में क्या था कि जहन्नुम को किससे ढक दिया गया, ख्वाहिशात, लज्जात, शहवात, इन चीजों से। इसमें अट्रैक्शन है, लोग भागते हैं इसकी तरफ। नेकी का काम है, उसके अंदर कुछ करना पड़ता है, अल्लाह का काम, उसके रसूल का काम, कुरान को सीखना, ये कुछ कहता है, हमसे कुछ डिमांड करता है, उनमें वो कुछ नहीं कह रहे होते, बस मस्त हो जाओ। ये मुश्किल लगता है लोगों को, वो आसान लगता है, उसमें मजा भी है, फन भी है, क्यों ना जाए। और अगर दीन के नाम पे है तो फिर तो बड़ा ही अच्छा हो गया, दीन से भी फारिग होकर, और सवेरे हमने अटेम्प्ट कर लिया, तो फरागत है, बैठ के मिलाद कर लिया, नाते सुन ली और सर धुल लिया, बड़ा मजा आ गया, कुछ कुछ करने को थोड़ी कहा गया। तो अच्छा है चलो, ऐसा दीन सबको अच्छा लगता है, और जो दीन कुछ करने को कहता है ना, बदलने को कहता है, वो नहीं अच्छा लगता, वो मुसीबत लगने लगता है, इसलिए लोग उसे भागते हैं। तो अगर यही दीन होता तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही करा के तो फिर मसला क्या था, वहां पे तो कोई इतनी मुश्किल ही नहीं होनी, यही करा दिया जाता वहां पे, मिलादें हो जाती, उर्स मेले हो जाते, चादरें चढ़ा दी जाती, कुंडे मुंडे हो जाते, दमाल दमूल डाल लेते लोग, फिर मुश्किल क्या थी इसके अंदर। प्रॉब्लम ही तब आता है जब इंसानों को कहा जाता है अपने आप को बदलो, अल्लाह की इताअत में आओ, अल्लाह की बंदगी में आओ, फरमाबरदारी की तरफ आओ, छोड़ो इन चीजों को, तब वो कहता है हाय कैसे छोड़ो। ये उनका हाल था। तो इन अक्सरियत इनकी देखोगे भाग भाग के जाते हैं गुनाहों के अंदर, ज्यादती के काम, और अकली ही मुस्त हराम खाने में वो माहिर है, वो फर्क ही नहीं पड़ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों पे ऐसा जमाना आएगा कि उनको परवाह ही नहीं होगी कि हलाल है कि हराम है, जो मर्जी है खाते जाओ। आ रहा है ना कहीं से, कहते बड़ा भाई अल्लाह ने बड़े रंग लगा दिए, अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया, बाकी क्या बताएं, इसी को कामयाबी समझते हैं। रिश्वत से आ रहा है माल, बेईमानी से आ रहा है, लूट खसूट का है, मिलावटें करके है, जो मर्जी करके है, किसी को धोखा दे के है, झूठ बोल के है, कोई परवाह नहीं। साफ ही कहते हैं इसके बगैर तो काम ही नहीं चलता, रिश्वत के बगैर। किसी ने कहा था, एक किसी का ईमेल भी आई थी, उन्होंने कहा देखिए आज के दौर के अंदर रिश्वत के बगैर जॉब ही नहीं मिलती, तो हमें देनी पड़ती है रिश्वत अगर नौकरी करनी है तो, वरना नहीं मिलेगी, यानी ये हाल हो गया। तो हराम खाने में होशियार है, हराम कारोबार भाग भाग के करते हैं, लबिक समा कैनू या मलून, कितना बुरा है जो ये करते हैं, कि इनकी दौड़े होनी क्या चाहिए। वसारियो इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, और कुरान कहता है युसारियूना फिल खैरात, फस्तबिकुल खैरात, ये कहता है दौड़े लगाओ, मुकाबले करो नेकियों के अंदर। इनकी दौड़े किस तरफ को, हमारी दौड़े किस तरफ को है, हम दौड़ते किस तरफ को है, भाग भाग के किधर को जाते हैं, हमारा दिल किधर लगता है, हमें मजा कहाँ आता है। आज तो दीदा दलेरी है ना, उसको शर्म भी नहीं आती। तो युसारिऊना फिल इस्मि वल उदवान व अक्लिहिम अस-सुहत। हमारे टीचर एक दफा बता रहे थे, उन्होंने कहा कि एक जगह वो दर्स के लिए गए, कहते हैं इससे घर वाले भी उनके चले गए घर से, जिसने बेचारे ने रखा था वो एक बंदा और उनके वालिद साहब, कहते वो भी इतने शर्मिंदा थे कि हद से ज्यादा, तो कोई भी नहीं आया। तो उन्होंने कहा हम तीन ही बस फिर लोग हैं, तो मैं आपको ही दर्स दे देता हूँ फिर, और क्या। तो ये हाल है, और आप इसके बरक्स दूसरी मजलिस से रखवा लें, कवालियां करा लें, आप देख लें फिर आप कितने लोग आते हैं, मजा आएगा ना उसमें, सब बैठेंगे। इसको ही आज दीन बना दिया, इसी चक्करों के अंदर हम, ये बस दीन हो गया, इसका काम हो गया, ये सुन ली बस मुकम्मल दीन है। लौला यनहाहुम रब्बानीयून वल अहबार अन कौलिहिम अल इथ्म व अक्लिहिम अस-सवाद, ये इतनी सख्त आयत है ना, इतनी सख्त आयत है इल्म वालों के लिए, कि पूरे कुरान में इससे ज्यादा सख्त आयत नहीं है। जो अल्लाह वाले रब्बानी और खुद को इल्म वाले या आलिम कहलाते हैं ना, उनके लिए अल्लाह ताला ने उनको कहा क्यों नहीं ये मना करते इनको, इन लोगों को गुनाहों से, गुनाहों की बातों से इनको क्यों नहीं मना करते, हराम खाने से इनको क्यों नहीं मना करते ये लोग, यानी इतनी सख्ती इनको कही गई, यानी इनका कसूर उस माशरे के चोर डाकुओं से भी ज्यादा है, ये एक तफसीर में लिखा होता है, उनसे भी ज्यादा, इसलिए कि इनका कसूर ये है कि ये अपने अल्लाह अल्लाह लगे हुए, इनको पास इल्म भी है सब कुछ भी है, उनको तो मना नहीं करते कि तुम ये क्या करने लगे हुए हो, तुम्हारी तुम्हारी तो जिम्मेदारी ये थी कि तुम लोगों को बुराइयों से रोकते, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, लोगों को गलत कामों से टोकते, कहते कि ये गलत है, वो माने या ना माने वो उनके बाद की बात है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी थी, आया था ना पीछे बिमस्तफिजू मिन किताब अल्लाह, कि ये तो तुमने तुम्हारी इनकी जिम्मेदारी थी रब्बानी उनकी अखबार की इन उलमा की, कि ये हिफाजत करें अल्लाह की किताब की, हिफाजत सिर्फ ये नहीं है कि हिफाजत वैसे उसके अल्फाज की हिफाजत, इसके माने की भी हिफाजत करें, लोगों को बताएं कि इसमें क्या है, लोगों को बताएं ये गुनाह है, लेकिन वो खुद ही बताना उन्होंने क्या था, वो खुद ही करप्ट हो गए, जिसके जिम्मे घर की हिफाजत की जिम्मेदारी लगाई जाए अगर वो ही घर में ढाके डालना शुरू हो जाए तो फिर किसी और को क्या कहना, जो इनको रोल प्ले करना था ये तो खुद ये काम करने शुरू हो गए, ये खुद हराम खाने लगे, लोगों से नजराने लेने लगे, पहले हमने बात पढ़ी है ना, ये इन्होंने क्या किया, ये सख्त खाने लगे, ये यानी हराम, मैंने आपको पहले बताया था ये पीछे जो आयत गुजरी है कि इन्होंने अल्लाह की आयतों को बेचना शुरू कर दिया, आयत नंबर 42 के अंदर, ये तो खुद झूठ के सुनने वाले और खाने वाले बन गए, तो मलामत उनके ऊपर इसलिए ज्यादा की गई है कि इनका ये काम है कि ये काम करें, ये इनकी जिम्मेदारी है, जब इल्म आ जाता है तो वो तस्बीहां करने के लिए नहीं है कि आप वो कोने में बैठ के तस्बीह करें, हम तो हम भाई हमें क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी दुनिया करती रहे, हम तो अपनी अल्लाह अल्लाह करेंगे भाई, ये नहीं है, फिर वो इल्म अब आया है तो अब दूसरे को कहो अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर करो, फिर बताओ कि नहीं ये गलत है, वो कहते हैं हम अगर बताएंगे तो फिर हमारी चौधराहट का क्या होगा, आज जैसे वो कहते हैं कि आप हमें डोनेशन दे दें, अगर हमने इनको मना किया ना कि ये आप तो ये गलत काम कर रहे हैं तो हमें डोनेशन कहाँ से मिलेगा, हमारी मस्जिद को डोनेशन नहीं देंगे, यही तो सबसे ज्यादा डोनेशन देते हैं, तो ये इन साहब का हम ये नहीं कह सकते, और फिर ये भाई हमारे फंक्शंस पे हमें इतना सपोर्ट करते हैं, ये हमारे बड़े मतलब हमारी जेब गर्म करते रहते हैं, हमें खाने खिलाते हैं, हमारे काम करवाते हैं, ये इतनी बड़ी पोजीशन के ऊपर बैठे हैं, कल को इनसे काम पड़ेगा तो हम तो ये नहीं कर सकते कि इनको नाराज करें, लिहाजा हम इनके खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, इनको करते रहे जो मर्जी करते हैं, हराम खाएं जो मर्जी खाएं, हमें बस डोनेशन दिया करें, दैट्स इट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीजों से तो मना किया था, तो वो आपके वैर पड़ गए कि ये जो तुम शिर्क कर रहे हो ये गलत है, अब अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही कहते कि बस ठीक है कुछ नहीं मैं अपना अल्लाह अल्लाह करता रहता हूँ, जब तक हिरा में बैठ के अपने काम कर रहे थे अपनी इबादत कर रहे थे तो कौन मना करता था, करते रहते, प्रॉब्लम ही यहाँ पे आता है ना, तो ये फर्ज है रब्बानियून का और अहबार का, जो अल्लाह वाले हैं, जो दरवेश हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के दीन वाले हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ ये जो इल्म आप ले रहे हैं ना, इसके बाद फिर हक का बोलना जरूरी है, हक के लिए खड़े होना जरूरी है, फिर ये नहीं है, देखिए वो लोग धड़ल्ले से बातिल कर रहे हैं, बातिल की महफिलें सजाएंगे, बिदतें करेंगे, सब कुछ करेंगे, अगर हक वाले ही सो जाएं जिनके पास सही इल्म है तो बेचारी भोली आवाम कहाँ जाएगी, जो किसी के पीछे भी चल पड़ते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे कुछ देख लिया वो अंधाधुंध वही करना शुरू हो गया, आजकल तो यहीं से दीन लिया जाता है ना, कुछ नहीं पता बस जो व्हाट्सएप पे आ गया लिखा हुआ उसको अंधाधुंध मानते जाना है, तो वो नहीं है बात, वो आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना, वो जो खरगोश है उसके पास स्पीड है, वो अगर चार छलांगे मार ले तो वो फिनिश लाइन पे पहुंच सकता है, लेकिन वही अगर सो गया तो फिर क्या होगा, जिन लोगों के पास इल्म है वो काम कर सकते हैं, उनके पास वो टूल है, अल्लाह ताला ने उनको ये मौका दिया है, उनको ये इल्म दे के उनको चूज किया, लेकिन वो भी अगर सोए ही पड़े रहे, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो चलो ठीक है, जो हो रहा होता रहे, फिर कैसे खत्म होगा? वो तो अपनी गलत चीजों का भी, हराम चीजों का भी इतना प्रोपोगेंडा, इतना ज्यादा उसको प्रोपोगेट करते हैं, प्रोपोगेंडा नहीं, प्रोपोगेट करते हैं उसको, इतना उसको सेलिब्रेट करते हैं धड़ल्ले के साथ, इतना उसको उसकी शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं, डरते नहीं है वो, और जो हक वाले हैं वो चुप करके बैठ जाते हैं। आपको पता ही है कि वो हदीस के अल्लाह ताला ने जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि जाओ फलां बस्ती को जाके उसके ऊपर अजाब करो, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, यार या अल्लाह वहां पे तो एक बंदा है, वो इतना ज्यादा तेरा नाम लेने वाला, तेरी इबादत करने वाला, इतना ज्यादा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि उसी के घर से शुरू करो। क्यों? इसलिए कि उसको कभी अल्लाह की हदें तो तोड़ती देखता था, उसने कभी भी उनको मना नहीं किया, उसके माथे पे शिकन नहीं आई। इसलिए उसके ऊपर अल्लाह ताला का गजब ज्यादा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में कोई अल्लाह की नाफरमानी करे और वो लोग कुदरत रखते हैं कि इसको रोक सके लेकिन नहीं रोकते, तो अल्लाह ताला सब पे अपना अजाब नाजिल फरमाएगा। हम कहते हैं हम अच्छे बने रहे, हम क्यों बुरे बने भाई? अच्छे बनने का हमें बड़ा शौक है ना, फिर भी बुरे ही बनते हैं, आप देखना, फिर भी बुरे बनेंगे, अल्लाह बुरा बना देगा। इसलिए अल्लाह को नाराज करके जब लोगों को के सामने अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो कभी अच्छे नहीं बन सकोगे। एक खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो सॉरी हजरत अली ने फरमाया, ये खुतबे में अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद हजरत अली ने फरमाया, लोगों तुमसे अगले लोग इसी वजह से हलाक कर दिए कि वो बुराइयां करते थे तो उनके आलिम और उनके अल्लाह वाले खामोश रहते थे, जब ये आदत उनमें पक्की हो गई तो अल्लाह ने उन्हें तरह तरह की सजाएं दी। बस तुम्हें चाहिए कि भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, इससे पहले कि तुम पे भी वही आजाब आ जाए। वो लोग क्या करते थे, लोगों को मना करते थे, उनके ये बनी इसराइल के ना उलामा लोगों को मना करते थे, जब वो नहीं मना होते थे ना तो फिर उसके बाद उनके साथ ही बैठ जाते थे उन्हीं चीजों के अंदर, फिर माइंड नहीं करते थे, बस एक दफा मना कर दिया काफी था। लबिक समा कैनू यसनाउन, कितना बुरा है जो वो करते हैं। सनत से है ना, ये सना सनत होता है ना, जैसे सनत तो हरफत मैन्युफैक्चरिंग करना, तो जब उलमा की बात आई, अल्लाह वालों की बात आई, तो यसनाउन आया, जब आम अवाम की बात आई तो फिर यामलून आया। इसलिए तो यसनाउन में क्या है, यानी इंसान कसद के साथ, सनत है ना, कसद के साथ, इरादे के साथ, यानी वो जानता है समझता है उस बात को फिर भी उसको करता है, तो फिर ये यसनाउन है। और वो अवाम उन्नास जो कर रही है वो बिला समझ भी करती जाती है, उनका या मालूम है, इनको पता था हमें नजराने नहीं मिलेंगे, हमारे फिर लोग हमारे उस तरह से हिमायती नहीं रहेंगे, जैसे आज भी कोई मेरा फैन नहीं रहेगा, मेरे फैंस कम हो जाएंगे, फॉलोइंग कम हो जाएगी, लोग सुनने नहीं आएंगे मुझे, सारों को खुश रखो बस हमारे बन के रहें। तो जिस कौम में ऐसे हो जाए ना कि लालच की वजह से या बस अपनी शोहरत के लिए या किसी खौफ की वजह से उलमा इस तरह हो जाए, फिर वहां पे अजाब ही आते हैं। अल्लाह अकबर, वकालत यहूद यदुल्लाह मगलूला, ये एक मिसाल है कि ये कितने डिसरिस्पेक्टफुल थे, आज भी ऐसा हाल है, और आज तो क्रिश्चियंस में भी ऐसी चीजें हैं। यहूद ने कहा, हमने पहले भी पढ़ा था ये सूरह आले इमरान में, कि इन्होंने कहा कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, तो उन्होंने आगे से कहा क्यों, अल्लाह फकीर है, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्ला, और हम अग्निया हैं, हम अल्लाह को देंगे अब क्या, कि वो खुद नहीं दे सकता। तो यहाँ पे भी वकालत यहूद यदुल्लाह मगलूला, यहूद ने कहा अल्लाह के हाथ बंधे हैं, यानी कि वो नहीं दे सकता, बुखल के लिए आता है ना ये चीज, यानी अल्लाह ताला ने अपने हाथ को खर्च से रोका है तो वो हमें कह रहा है कि तुम खर्च करो। और ये इनको जब कहा जाता था ना किसी को दो, तो कहते थे अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही उसको खिला देता, हम क्यों दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया गुल्लत अईदीहिम वलुइनु बिमा कालू, इनके ऊपर लानत इस वजह से, इनकी बदतमीजियों की वजह से, बदतमीजियों की वजह से कि ये अल्लाह की जात को भी वो मकाम जो अल्लाह ताला का है उस तरह से नहीं देते। अल्लाह ताला ने फरमाया इनके भात बंदे में, कंजूस तो ये खुद है। आप देखिए आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंजूस कौम ये यहूदी है, इनके हाथ बंधे में और लानत किए गए हैं इस वजह से जो उन्होंने कहा। बलियदाहु मबसूता था, नहीं अल्लाह का हाथ तो खुला हुआ है, युनफिकु कैफ यशा, वो तो खर्च करता है जैसे वो चाहता है। आप सोचे जब से दुनिया बनी अल्लाह ताला खर्च कर रहा है और कर रहा है और कर रहा है, और उसके खजानों में कोई कमी नहीं आई, और दिन रात का खर्च करना कुछ भी घटाता नहीं है उसके खजानों से, शुरू से लेके आज का तक जो कुछ भी मखलूक को अता हुआ है वो अल्लाह के खजानों से ही हुआ है ना, तो कुछ कमी नहीं आई। तो वो तो खर्च करता ही जा रहा है, वो तो रोज खर्च करता है, वो तो हर पल खर्च कर रहा है। सारी मखलूक कहां से खा पी रही है, कहां से वो सस्टेन अपने आप को कर रही है। वला यजीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्जिला इलैका मिन रब्बिका तुग्याना व कुफ्रा, और नहीं ज्यादा, और अलबत्ता जरूर ज्यादा करती है बहुत सो को इनमें से जो नाजिल किया आपकी तरफ आपके रब ने तुग्यान में और कुफर में। यानी इनको अगर आप मा उन्जिला इलैका मिन रब्बिका की जगह पे आप यहाँ पे ब्रैकेट में कुरान लिख लें तो आप क्या तर्जुमा है, अलबत्ता जरूर बढ़ा देता है। इनमें से बहुत सारे लोगों को कुरान किस चीज में, सरकशी में और कुफर में, यानी कुरान बजाय इसके कि हिदायत इनको इससे मिले, इनको उसे क्या मिलता है, सरकशी और कुफर। इसलिए कि इनकी अपनी हालत बिगड़ी हुई है। देखें एक बीमार को अगर आप देसी घी दे दें और आप बादाम और पिस्ते खिलाना शुरू कर दें जिसका पेट पहले ही खराब है, तो उसका पेट और खराब हो जाएगा। अब हालांकि ये हेल्दी चीजें हैं लेकिन उसको रास क्यों नहीं आ रही, वो बीमार है ऑलरेडी। इसी तरह कुरान तो हिदायत है, ये तो एक शिफा है, लेकिन इन लोगों के लिए जिनके अंदर पहले तो यानी और कुफर है, बीमार किस्म के लोग, इनको ये भी शिफा नहीं दे सकता, ये भी इनके लिए रहमत नहीं बनेगा, हिदायत का सामान नहीं बनता। युदिल्लु बिही कसीरं व यहदी बिही कसीरा, इस कुरान से ही बहुत सारे लोग गुमराह होते हैं और बहुत सी हिदायत भी पा लेते। कुरान का कसूर नहीं, मुझे किसी ने कहा जब उनको कुरान की तरफ दावत दी, वो कुरान को नहीं जानती थी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने एक बात ऐसी की कि मैंने कहा इन्होंने तो बात 100% जो कुरान में है वही की। वो कहने लगी ये जो आप पढ़ाती हैं ये भी उन लोगों को फायदा देता है जिनके अंदर वाकई कोई खैर है। कहने लगी बहुत सारे मैंने कुरान पढ़ने वाले देखे, उनको तो कोई भी नहीं फायदा, वो ही क्लासें लेते हैं, वही सब कुछ करते हैं, उनको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो मैंने कहा इसलिए कि कुरान में कमी नहीं है, ये उनके अपने अंदर कमी है, ये उनकी अपनी जमीन जो दिल की है ना। देखिए जमीनों पे बारिश होती है, हर तरफ बारिश हो रही होती है, कुछ जमीन में से फल फूल निकलते हैं, फसलें निकलती हैं जिससे सारी दुनिया फायदा उठाती है, कुछ जमीन कैसी होती है वो बंजर की बंजर रह जाती है, और कुछ जमीनें ऐसी होती हैं उनसे उल्टे कांटे निकलने लगते हैं, झाड़ झंकार निकलने लगती है जिससे लोगों को तकलीफ होती है। तो बारिश तो सेम है, जमीन का फर्क है। इनकी भी हालत ये थी, वो अलकैना बैनहुमुल अदावत वल बगदा इला यौमिल कियामत, हमने इनके दिलों में दुश्मनी और बोझ डाल दिए कियामत के दिन तक। ये बतौर सजा अल्लाह ताला ने इनको सजा दी कि इनके दिलों के ऐसे फट गए, आपस के अंदर भी ये एक नहीं है, ये उधर नसारा में भी बहुत अदावत है, ये बाहर से एक नजर आते हैं लेकिन अंदर से एक नहीं है, अल्लाह ने कयामत के दिन तक इनमें डाल दी। और एक दूसरे के साथ भी देखें जिस माशरे के अंदर भी ना ऐसी नफसा नफसी हो, ऐसी एक दूसरे के साथ खींचा तानी हो, ऐसे ऐसी चीजें हो, वहां पे आपस में भी वो एक नहीं होते। जहां लूट कसूट है, हराम खाया जा रहा है, गुनाहों के ऊपर सारे जमा हुए हैं, वहां पे हमदर्द मुआशरा तो नहीं होगा। वो हर इंसान कहेगा मुझे बस मिल जाए, दूसरे का दुश्मन ही होगा। तो आपस के अंदर भी इनके है और यहूदो नसारा में भी है। उल्लमाउ कदुनार लिल हर्बी अतफाउल्ला, इन्होंने तो बड़ी कोशिशें की कि ये आग भड़काएं जंग की, कभी मुशरिकीन को जाके उभारते थे, कभी किसी को, कभी चाहते थे यहूदियों और मुसलमानों की किसी तरह ठन जाए, कभी जाके औस और खजरज को एक दूसरे के खिलाफ उकसाते थे कि जो है ना देखा वो याद करो ना तुम्हारी जो जंगें हुई थी, उनको याद करा के तो पुरानी बातें कि ये आपस में लड़ पड़े, इतने फसादी थे। जब भी इन्होंने भड़काई आग जंग के लिए, अल्लाह ने उसको बुझा दिया। इसी तरह इन्होंने किया था, अंसार जो औस और खजरत थे उनको ऐसी चीजें याद दिलाई, वो भड़क पड़े। अभी ये करीब था कि वो तलवारें निकाल के एक दूसरे से लड़ने लगते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। वह यस आउना फिर अर्द फसादा, ये भागते दौड़ते हैं फसाद करने के लिए जमीन के अंदर। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कत्ल करने के लिए जहर दे दिया, औरत ने, यहूदी औरत। इसी तरह बनू नजीर ने चक्की ऊपर से, चक्की का पार्ट नीचे, उनको बिठा दिया, हम अभी आते हैं, अभी डिस्कस करते हैं, आप यहाँ बैठे। ऊपर गए ऊपर से चक्की गिराने के लिए कि हम गिरा के उसका पार्ट और इनको नीचे ये क्रश हो जाए। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहि सलाम के जरिए इत्तला दी, वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन। याद रखना, चाहे ये हो चाहे दुनिया में कोई भी फसादी है जो इस तरह के फसाद करते, अल्लाह ताला को फसादी लोग पसंद नहीं। कई औरतें फसादी होती हैं, उनका काम क्या है फसाद कराना। कुल्लमा उकदुनार लिहा, ये जैसे यहाँ पे है ना कि उन्हें भड़काई आग जंग के लिए, इस तरह कुछ औरतों का किरदार ऐसा होता है कि वो जंग के लिए आग भड़काती रहती है, फ्यूल करती रहती है, उसके अंदर डालती रहती हैं कि जो है ना बस किसी तरह लड़ाइयां हो जाए, यहाँ पे इस खानदान में लड़ाई हो जाए, फलां फलां से लड़ पड़े, दोस्तों की आपस में लड़ाई हो जाए, मियां बीवी आपस में लड़ पड़े, ये लड़ पड़े, ये आराम से क्यों बैठे हैं, इनके अंदर चैन क्यों है, उधर से उधर को कह दिया उसने तो तेरे बारे में ये कर दिया। याद रखें, हमने आज पढ़ा है ना कि अल्लाह मोहब्बत करता है किनके साथ, और यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि अल्लाह ताला को नहीं मोहब्बत किन लोगों के साथ। पहले हम पढ़ चुके हैं और बार बार कुरान में आएगा ये भी कि किन से अल्लाह मोहब्बत करता है और किन से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ताला फसादी लोगों से मोहब्बत नहीं करता जिनको शौक होता है लड़ाइयां कराने का, अब वो माने या ना माने। लेकिन आप देख लें कि अगर आपकी बातों से लोगों के घरों के अंदर लड़ाइयां पड़ती हैं तो क्या है आपका किरदार, फसादी का किरदार है। वैसे हम माइंड करें आए हमें क्यों फसादी कह दिया, लेकिन और ये क्या होता है, अब ये लगाई बुझाई इधर करना उधर करना, उधर की उधर बता देना, उसको उधर से बदजन कर देना, उसकी उससे नफरत दिला देना, उसका दिल ही खट्टा हो गया, खराब हो गया दूसरे से आपकी बातों की वजह से, तो ये क्या है, फसाद है और क्या है। वो ना भी उससे जाके लड़े, आपने उसका दिल इतना खराब कर दिया वो दूसरे की शक्ल ही देखना नहीं चाहता, ये क्या है। ये यहूदियों का ये किरदार था। तो ये फसाद वाली तबीयतें अल्लाह को नहीं चाहिए। आज पता चल गया ना कि कौन सी लोग हैं जिनको अल्लाह, जिनसे मोहब्बत करता है और किन से नहीं करता। वलो अन्न अहल किताबी आमनू वत्तकू लकफरनाहुम सय्यिआतिहिम वलअदखलनाहुम जन्नातिन नईम। अगर ये अहले किताब भी ईमान लेकर आते, अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारते, इनकी जिंदगी की प्रायोरिटी क्या होती कि अल्लाह को राजी करना है और उस कोई ऐसा काम ना करें जिससे अल्लाह नाराज हो। मैंने आपको क्या बताया था तकवा क्या होता है, ये है तकवा की डेफिनेशन। तो हम इनसे इनकी बुराइयां दूर कर देते। सैयाद से मतलब गुनाह भी है और सैयाद से मतलब मुसीबतें भी हैं। अल्लाह मुसीबतें इनसे दूर कर देता, अल्लाह इनके गुनाह दूर कर देता, धो देता इनके गुनाह और इनको जन्नत में दाखिल कर देता जो नियमतों वाली है। यानी जो ईमान ला के तकवा की रविश इख्तियार करे उसका ये इनाम है। वलो अन्नहुम अकामु तौरात वल इंजील वमा अंजिला इलैहिम मिन रब्बिहिम। और अगर ये तौरात को कायम करते, इंजील को कायम करते, क्या मतलब होता है कायम करने, यानी इसमें रद्दो बदल ना करते, इफरात और तफरीत ना करते, जैसे है उसको अपने माशरे में उसके मुताबिक चलते, उसको फॉलो करते, वमा अंजिला इलैहिम मिन रब्बिहिम, जो भी इनके ऊपर नाजिल हुआ यानी कुरान भी, इसको अगर ये फॉलो करते, लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, तो वो खाते अपने ऊपर से भी और अपने नीचे से भी। यानी अगर ये शरीयत को नाफिज करते जो इनकी किताबों में थी, और जब कुरान आया तो इसको मान लेते, तो ये ऊपर से भी खाते और नीचे से भी। मतलब क्या है, अल्लाह ताला इनके ऊपर नियमतों की बारिश करता है, खजाने के मुंह खोल देता, जमीन से भी फसलें इनके लिए उगती हैं, आसमान से बारिशें इनके लिए होती। तो अल्लाह ताला इनको यानी खुशहाली अता फरमा देता। आपको पता है ना हदीस में आता है कि अल्लाह की हदों में से, पूरी शरीयत की बात नहीं हो रही, अल्लाह की हदों में से एक हद का कायम हो जाना भी जमीन वालों के लिए 40 दिन की बारिश से बेहतर है। खैर वाली बारिश जो 40 दिन तक होती रहे, खैर वाली बारिश, उससे ज्यादा बेहतर अल्लाह की एक हद का कायम हो जाना। तो पूरी शरीयत नाफिज हो जाए तो कितना बड़ा खैर और बरकत के दरवाजे खुल जाए। लेकिन फिर भी कहा गया मिनहुम उम्मतुम मुक्तसिदा, उनमें से एक ग्रोह ऐसा भी है जो दरमियाना चलने वाला, यानी ना वो इफरात करते हैं ना तफरीत, ना तो ईसा अलैहि सलाम को खुदा बना दिया, ना उनको वलदु जिना कर दिया, ना इस तरफ ज्यादा ना उस तरफ ज्यादा, दरमियानी है। पहले भी आया था ना लईसु सवा, सारे ये बराबर नहीं है, इनमें से वो भी लोग हैं जो सीधे चलने वाले, दरमियाना रास्ता इख्तियार करने वाले। वो कौन थे? नज्जाशी, अब्दुल्ला बिन सलाम और इनके जैसे कुछ लोग थे जो ईमान भी ले आए थे। वो कसीर उम्मिन हमसा अमा या मालूम, लेकिन अक्सरियत इनमें से कैसी है? बहुत सारे इनमें से ऐसे हैं तो बहुत बुरा है जो वो अमल करते हैं। यानी कैसे कैसे इन्होंने जो हरकत की वो ये सारी आपके सामने है जो ये अमल करते रहे, अक्सरियत वैसी है। हाँ, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो वाकई सही चलने वाले हैं और वो आखिर वक्त तक हक पे ही रहे, लेकिन आप देख रहे हैं कि खैर कितनी ज्यादा है अगर इंसान, जो माशरा, जो लोग अपने यहाँ अल्लाह के दीन को, उसकी किताब को नाफिज करते हैं, उसको कायम करते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी खैर की खुशखबरी है कि वो खाएंगे नीचे से भी और ऊपर से भी, और जब इसके खिलाफ चलेंगे तो फिर क्या होगा? फिर उलट ही होगा, ना दुनिया में कोई फायदा और ना आखिरत में। अल्लाह ताला हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जो आज हमने पढ़ा है अल्लाह ताला इसके कायम करने की तौफीक हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला इन खुश नसीब लोगों में हमें भी शामिल फरमा दे जिनका यहाँ पे तذکرہ हुआ, ये खसूसियात हमें पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون من إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون